अजीब नमूना बनाइए महादेव आपने भी, मतलब हद ही हो गई है। नींद में खाती भी है और बोलती भी है, ऐसा एंटीक पीस बनाने की क्या जरूरत थी? और बनाई तो बनाई, इसे मेरी ही जिंदगी में तहलका मचाने को क्यों भेजा? ईशान ने मन ही मन महादेव से शिकायत की, पर अब क्या फायदा होना था? जो किस्मत में एक बार लिख गया उसे झेलना तो था ही। सो ईशान ने भी गहरी सांस छोड़ी और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर कशिश के चेहरे पर छींटे मार दिए। अगले ही पल कशिश ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली और सामने खड़े ईशान को देखकर मुंह बिचकाते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। खाने के साथ साथ तुमने मेरा जीना सोना सब हराम किया हुआ है। न चैन से जीने देते हो न खाने देते हो, और अब जब भूखे पेट सो रही थी तो यहां भी चले आए मेरी नींद हराम करने। कहीं भी चैन नहीं है तुम्हें। कशिश गुस्से से बिदक उठी, झल्लाई हुई थी वो। साफ जाहिर था कि नाराज थी और नींद में खलल पड़ने से कुछ भड़क भी गई थी। परेशान इत्मीनान से था, देवी जी आपकी नींद में खलल मैंने बस इसीलिए ही डाली है ताकि आप नींद में खाने के सपने देखने की जगह हकीकत में अपने भूखे पेट को कुछ आहार देकर उसे शांत करवा सके, ताकि फिर पेट भरने के बाद चैन की नींद सो सके। ईशान ने बड़ी ही तहजीब के साथ कशिश को अपनी गुस्ताखी के पीछे की वजह से रूबरू करवाया। उसकी बात सुनकर कशिश ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और मुंह घुमाते हुए नाराजगी से बोली, नहीं खाना मुझे अब कुछ भी। ये कोई वक्त होता है खाना खाने का? बेचारे मेरे पेट के चूहों ने तो अब तक तड़प तड़प कर आत्महत्या भी कर ली होगी। मेरा पेट आंतों से जाकर चिपक गया। तुम्हारे इंतजार करते करते मैं भूखी सो गई और अब तुम्हें मेरी भूख की चिंता हो रही है। नहीं खाना मुझे कोई खाना वाना, भूखी ही मरूंगी और इसका सारा एग्जाम तुम्हारे सर पर आएगा। देखना कल से की न्यूज़ में बड़े बड़े अक्षरों में छपेगा कि एक बेरहम बेदर्दी संगदिल जल्लाद पति के देर रात घर आने की वजह से उसकी प्यारी सी भोली सी पतिव्रता पत्नी की भूख से जान चली गई। एक बार फिर कशिश शुरू हो चुकी थी अपनी बेसर की बातों के साथ। ईशान के देर से आने की वजह से उसे भूखा रहना पड़ा था, जिस वजह से वो काफी नाराज थी और अपनी उल्टी पुल्टी बातों से अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी। उसकी अतरंगी बातें सुनकर ईशान का सर घूम गया। अगले ही पल उसने खींचते हुए कहा, शट अप काशी, कुछ भी बकवास किए जा रही हो। सबसे पहली बात तो ये कि एक रात भूखे रहने से किसी की जान नहीं जाती, और दूसरी बात ये कि तुम अपने भूखे रहने के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि मैंने साफ साफ शब्दों में तुम्हें कहा था कि मेरा इंतजार मत करना, खाना खाकर सो जाना, पर तुमने फिर भी मेरे मना करने के बावजूद भूखे रहकर मेरा इंतजार किया। ये तुम्हारी खुद की मर्जी थी, इसलिए अगर किसी को कसूरवार ठहराना है तो खुद को ठहराओ। मुझे बेवजह कोसने या गुनहगार बनाने की जरूरत नहीं है। ईशान की बात सुनकर पहले तो कशिश स्तब्ध से उसे देखती ही रह गई, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरते हुए बोली, हाँ मेरी ही गलती है जो मैंने सोचा कि तुम आज दुखी हो, तो तुम्हारे आने पर तुमसे प्यारी प्यारी बातें करके तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगी, इसलिए अपनी प्यारी सी नींद त्याग कर इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुमने कुछ खाया नहीं होगा, और अगर सब खा लेंगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे और भूखे ही रह जाओगे, इसलिए इतनी रात तक भूखी रहकर तुम्हारा इंतजार करती रही, जबकि खाने से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हारे बारे में इतना सोचा। मेरी ही गलती है जो मुझे तुम्हारे दुख तुम्हारी उदासी से फर्क पड़ता है और मैं उसे दूर करने का उपाय सोचती रहती हूँ। सब मेरी ही गलती है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवा दिया। अब नहीं करूंगी मैं ये गलती। बस कुछ दिन और झेल लो मुझे। दीदी की शादी हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी तुम्हारे घर और तुम्हारी जिंदगी से। फिर कोई तुम्हारे लिए भूखे रहकर तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। फिर कोई नहीं रखेगा तुम्हारा ख्याल। कोई नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में। जैसे चाहे रहना, जो मर्जी करना, कोई बंदिश नहीं होगी तुम पर। कशिश ने अपनी हथेलियों से अपने आंसू पोंछे और मुंह फेरकर बालकनी में चली गई। जाते जाते अपनी सारी भड़ास निकाल गई थी वो। उसने अनजाने में ईशान को ऐसी हकीकत से रूबरू करवा दिया था जिसने ईशान के दिल को बेचैन कर दिया। कशिश के आंसू उसकी बातें ईशान को व्याकुल कर गई थीं। एक तरफ कशिश की उसकी परवाह करना, ख्याल रखना, उसके बारे में इतना सोचना अच्छा लग रहा था ईशान को, वहीं ये सब कुछ दिनों के लिए और है, ये सोचकर अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। कुछ पल वह खुद में उलझा वहां खड़ा रहा, फिर एक शॉल लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। कशिश रेलिंग के पास अपनी बाहों में खुद पर लिपटी हुई सी खड़ी थी। सर्द हवाएं चल रही थी वहां। कशिश ने कोई गर्म स्वेटर या शॉल नहीं लिया हुआ था तो ठंड लगना लाजमी ही था। उस सन्नाटे में उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। ईशान ने पीछे से शॉल को कशिश के कंधों पर फैलाकर डालते हुए उसे ठंक दिया, पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए कशिश ने शॉल झटक दिया और दूसरी तरफ खिसक गई। ईशान ने आगे बढ़कर फिर उसे शॉल से ठंका, पर कशिश ने एक बार फिर शॉल झटक दिया और बेरुखी से बोली, तुम्हारी झूठी परवाह की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद से अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम जाओ यहां से। कशिश ने गुस्से भरी नम आंखों से ईशान को घूरा, फिर उससे दूर हट गई। अब ईशान ने ही उसे नाराज किया था तो उसके नखरे उठाकर उसे मनाना भी उसी का फर्ज था। एक और आखिरी कोशिश की उसने। अब की बार हार ना मानते हुए ईशान ने एक बार फिर उसके कंधों पर शॉल डाला, पर इससे पहले कि कशिश शॉल झटक पाती, ईशान ने शॉल को पकड़ते हुए कशिश को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। कशिश पहले तो उसके ऐसा करने से चौंक गई, फिर गुस्से में भुनभुनाई।
अपने पेट पर लिपटी उसकी बाहों को हटाने लगी। परेशान ने उसकी कमर पर अपनी बाहों के घेरे को कस दिया, जिससे कशिश चाहकर भी उसकी बाहों के कैद से आजाद ना हो सकी और उसकी बाहों के घेरे से आजादी पाने को बुरी तरह छटपटा उठी। बिल्कुल वैसे जैसे मछली पानी से बाहर निकालने पर छटपटा जाती है वापस पानी की गहराइयों में खोने को। बस कर दो पाशी, नाराजगी मुझसे है ना, तो खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो? इतनी ठंड है, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। ईशान की आवाज में चिंता, फिक्र, परवाह साफ छलक रही थी, पर कशिश कुछ ज्यादा ही नाराज थी। उसने तड़पते हुए कहा, तो लगने दो मुझे सर्दी, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? मैं मरूं या जीऊं, ये मेरी परेशानी है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे मतलब नहीं होना चाहिए मुझे तुमसे? तुम पत्नी हो मेरी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा ख्यास कौन रखेगी? कौन मेरे लिए इतनी रात तक जागकर मेरा इंतजार करेगी? कौन भूखी रहेगी मेरे लिए? फिर हम दोस्त हैं ना, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझसे मेरी एकलौती दोस्त छिन जाएगी, फिर तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। ईशान ने अपनी रूठी हुई बीवी को प्यार से मनाने की कोशिश की, पर कशिश की नाराजगी कम नहीं हुई थी। वो फिर तुनकते हुए बोल पड़ी, तो अच्छा ही होगा ना, तुम तो यही चाहते हो कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा मुझसे पीछा छूट जाए। उसकी नाराजगी दिखाने का यह अनोखा तरीका देखकर ईशान के लबों पर अनायास ही मुस्कान फैल गई। अच्छा, और तुम्हें ये किसने बताया कि मैं तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ? ईशान का सवाल सुनकर कशिश ने सर घुमाकर तीखी नजरों से उसे घूरा और मुंह फुलाते हुए बोली, मुझे सब मालूम है। फिर तो बहुत ही गलत मालूम है तुम्हें, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहता। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? कशिश ने ईशान से तुनकते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर ईशान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। सच में बताऊं कि मैं क्या चाहता हूँ? हाँ, कशिश ने तुरंत सहमति में सर हिला दिया। ईशान ने अब उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर दिया और उसके कंधे को थपथपाते हुए उसे अपनी तरफ घुमा लिया। कशिश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। ईशान ने उसकी भीगी आंखों को पल भर को देखा और अपनी उंगलियों से उसकी आंखों में बिखरे मोतियों को समेटते हुए बड़े प्यार से बोला, मैं चाहता हूँ कि दोबारा कभी तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों में आंसू ना आए।
फिर उसने उसकी गालों पर अपनी हथेली रखते हुए उसके छोटे से चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर दोबारा कभी गम और उदासी के बादल न छाएं। इसके बाद उसने उसके लबों पर निगाहें दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इन गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल लबों पर हमेशा वही मोहिनी मुस्कान सजी रहे जो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर खिलती है, जिससे तुम्हारी पहचान है। कशिश हुई हुई सी एकटक ईशान की आंखों में देखने लगी। आज पहली दफा किसी लड़के ने उससे इस तरह की बातें की थीं। पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए ऐसे भाव देख रही थी जिससे अब तक वो और ईशान दोनों ही अनजान थे। दोनों इस वक्त एक दूसरे के काफी करीब थे। उनके दिल सामान्य से तेज धड़क रहे थे। उनकी बेचैन धड़कनों का शोर उस सन्नाटे में गूंज रहा था। लब भले खामोश थे, पर दिल अपनी ही भाषा में गुफ्तगू करने में मगन थे। आकाश में चमकता चांद उन्हें एक दूसरे में गुम देख खुशी से मचलते हुए बादलों की ओट में जा छुपा और चुपकी से उन्हें निहारने लगा। उसकी चांदनी कशिश और ईशान पर फूलों सी बरस रही थी। हवाओं ने भी अपना रुख बदल दिया था, कहीं इस खूबसूरत लम्हे में उसकी सरसराहट से विघ्न न पड़ जाए। आकाश में सितारे खुशी से निहाल हुए जा रहे थे। दूर घाट से गंगा मैया की चंचल धारा भी इस मनोरम दृश्य को देखकर बल खाते हुए अपने प्रीतम की दिशा में बहने लगी थी और कल कल की तेज आवाज उनकी खुशी दर्शा रही थी, मानो खिलखिला रही हों। जाते जाते उन्होंने पलटकर एक नज़र ईशान को देखा और फिर अपनी रफ्तार में आगे बढ़ गईं। शायद उन्हें साथ देखकर वो भी अपने प्रीतम की बाहों में समाते को मचल उठी थीं। इन सबसे पूरी तरह से अनजान बेखबर कशिश और ईशान एक दूसरे की निगाहों में खोए हुए थे। अचानक ही उस गहरी खामोशी के बीच गुड़गुड़ की तेज आवाज गूंजने लगी, जिसने उनके एकांत में होती निगाहों की मौन वार्तालाप में खलल डाल दी थी। ईशान ने चौंकते हुए आवाज की दिशा में देखा। वहीं कशिश ने हड़बड़ाते हुए ईशान पर से निगाहें हटा लीं और अपनी हथेली को अपने पेट पर रख लिया, जैसे उसे चुप रहने का निवेदन कर रही हो। असल में ये आवाज़ उसके भूखे पेट से आ रही थी, जो अब भूख बर्दाश्त ना होने पर चीख चीख कर उसे खाना देने को कह रहा था, जिसके कारण कशिश ईशान के सामने शर्मिंदा हो गई थी और एम्बैरस फील करते हुए निगाहें घुमाने लगी थी, या यूं कहें कि ईशान से निगाहें चुराने लगी थी। ईशान ने पहले कशिश के पेट को देखा, फिर उसके चेहरे की तरफ निगाहें घुमा दी। कशिश के चेहरे पर घबराहट के भाव पसरे हुए थे। उसका छोटा सा घबराया हुआ चेहरा, यहाँ वहाँ नाचती बड़ी बड़ी काली आंखें, नर्वसनेस में भींचे लब,
बहुत क्यूट लग रही थी वो इस वक्त। उसकी प्यारी सी मासूम सी सूरत को देखकर अनायासी ईशान के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई।